रात के आखिरी पहर जब मैंने अहमद रजा को देखा, मतलब उसकी आवाज सुनी, उनके घर में एक जवान के साथ झगड़ा हो रहा था जिसका नाम बाद में समझ में आया कि कावे है। एक पड़ोसी था जो बड़ा शक्की था और मेरे शौहर के पास आकर बोला कि उनके चिल्लाने की आवाज से हमारा सुकून छिन गया, उन्होंने हमारा सुकून छीन लिया है। उसके बाद मेरा शौहर ऊपर गया उनको समझाने। बाद में मैंने देखा कि यही कावे घर से बड़े गुस्से में बाहर निकला और चला गया। उसके बाद घर से कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल खामोशी छाई रही। उस वाक्य के दो दिन बाद रात में मेरे शौहर के पास फोन आया। उसके बाद मेरे शौहर गए और मास्टर की ढूंढने लगे। उनमें से एक चाबी निकाली और घर से बाहर चले गए। तकरीबन आधे घंटे तक कुछ पता नहीं चला। तो मैं भी ढूंढने को निकली, देखा मेरे शौहर के हाथों में नोटों की गड्डी है और वो उन्हें गिन रहे हैं। उसके बाद लिफ्ट में सवार हुए और कावे के साथ बाहर आए। फिर मैं अहमद रजा के घर में दाखिल हुई, देखा कि दरवाजा खुला है। घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था, घर इतना बिखरा पड़ा था कि देखते नहीं बन रहा था। मैं बहुत डर गई थी। फिर देखा कि अचानक मेरे शौहर अंदर दाखिल हुए और मेरे पास आकर बोले कि अगर इस बाबत किसी को कुछ बताया और कहा तो तुम्हारे मुंह में मिट्टी भर दूंगा और बहुत बुरा हश्र करूंगा। मैं बहुत डर गई थी और मुझसे बोले कि घर को फिर से ऐसा करना है एकदम पहले जैसा हो जाए, कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ हुआ था। तुम्हारी तरह मुझे भी पता है कि बेबसी का मतलब क्या होता है, मुझे पता है कि अजनबी का मतलब क्या होता है। इसीलिए तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आई हूँ, ताकि ये सारी बातें तुम्हें बता दूँ। शायद तुम्हारे गुमशुदा शौहर की बाजियाबी का कोई रास्ता निकले। अगर हो सके तो कोशिश करना कि मेरे शौहर को मेरे यहाँ आने का पता ना चले, वरना बहुत गुस्सा होंगे। अब मुझे जाना होगा, माफ करना। Thank you.
फिदा हो जाऊं उन दिनों के जब तुम कंजूसी नहीं करती थी, आंखें नहीं फेरती थी मुझसे। फिदा हो जाऊं उन दिनों के जब अपनी जबान से बुलबुल की तरह बोलती, मुझसे आंखें नहीं फेरती, बस देखा ही करती थी और होठों में दुआ के अल्फाज दोहराती और मेरी तरफ फूंकती थी। अपने बिस्तर के नीचे हाथ डालकर 200 तुमान का नोट निकालती और मेरी तरफ बढ़ाती थी, मेरी तरफ बढ़ाती और कहा करती, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि सदका निकालना भूल जाओ। ऐसा मत करो नरगिस जान, ऐसा मत करो नरगिस जान, अगर मैं शिमर भी होता तब भी मेरे साथ ऐसा ना करती, मुझ में इसकी तवानाई नहीं, मुझ में सब कुछ बर्दाश्त करने की ताकत है पर तुमको खोने की नहीं। बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारा ना होना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बंद आंखें,
कैसे हो मश्ती?
सलाम कावी खान, आ जाओ।
मेरी वजह से तुम्हें दोबारा काम करना पड़ेगा।
नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ।
जा रहा हूँ बावर्ची खाने में।
कावी खान, कावी खान। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तुम देखो ये लोग क्या चाहते हैं।
सलाम, बैंक से आया हूँ, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। क्योंकि आपने बैंक से लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाया है इसलिए ये जगह खाली कराने का ऑर्डर लेकर आया। अलबत्त मैं पुलिस के साथ भी आ सकता था लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर की इज्जत का लिहाज रखा जाए।
आखिरी बार
जरा संभाल के दाना नीचे मत गिराना।
हेलो
अंकल शमसामी, क्या अभी इसी वक्त आप डैड के ऑफिस में आ सकते हैं? कावे ने फोन किया था, कह रहा था कि दो आदमी बैंक से आए हैं। उनका कहना है कि ऑफिस के कागजात बैंक के पास गिरवी हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। अभी मैं और डैड ऑफिस की ही तरफ जा रहे हैं। बस आप भी आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
समसामी को कुछ नहीं मालूम था क्या?
जब तक आप वहां जाएंगे नहीं, कुछ नहीं पता।
लेकिन मुझे सब पता है। वो मेरा ऑफिस है, उसके कागजात भी लॉकर में हैं, बैंक में गिरवी नहीं है।
अभी आप हौसला रखें, वहां चलकर देखते हैं क्या बात है।
मैं इत्मीनान से हूं।
बाबक, मेरी माँ जा रही है।
क्यों, इतनी जल्दी क्यों?
नहीं मालूम।
एक मिनट के लिए आओ, चलो देखें क्या बात है। हर्षखाना, अचानक जाने को क्यों तैयार हो गई आप?
अचानक और यूं ही नहीं बेटा, 2 दिन का इरादा किया था और 2 दिन पूरे हो गए।
अच्छा, अगर आपके 2 दिन 10 दिन हो जाएं तो क्या मुश्किल है? खुदा की कसम, अगर मेरे डैड के अखलाक की वजह से है तो वो सबके साथ इसी तरह रूठे।
अपने वालिद को बुरा मत कहो बेटा, वो तो भले इंसान है, तेहरान में मेरे दिल पर बोझ महसूस हो रहा है।
ठीक है, जैसा आप चाहें। फातिमा, तुम्हारी माँ जाना चाहती है और डैड के साथ मुझे ऑफिस जाना होगा, एक दूसरी मुसीबत सर पर आ गई है।
तुम जाओ, मैं टैक्सी लेकर बस स्टैंड तक इन्हें छोड़ दूंगी।
टैक्सी तो नहीं, रुको कुछ करता हूँ। रोया अपने कमरे में? हाँ। क्या, एक मिनट रुको।
सलाम।
सलाम रोया, मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा ड्राइविंग का मूड नहीं है, लेकिन फातिमा की माँ जा रही हैं। अच्छा नहीं है कि अकेले उन्हें टैक्सी से भेजूं। क्या उनको बस स्टेशन तक छोड़ दोगी? मैं खुद डैड के साथ जा रहा हूँ।
ठीक है,
शुक्रिया।
बाबक, अगर मैं तुमको ये कहूँ कि कावे के बारे में मुझे एक जुमले में बताओ तो तुम क्या कहोगे?
कोई अच्छा हो या बुरा, उसके एक जुमले में तारीफ नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों पूछ रही हो?
ऐसी कोई खास वजह नहीं।
इसका मतलब यह है कि तुम हर रोज सुबह को नींद से जागती हो तो तुम्हारा पहला काम होता है कि एक आदमी का नाम अपने दिमाग में लाती हो, तारीफ बयान करने के लिए एक जुमला ढूंढो। दरवाजा बंद कर दो।
बोलो क्या बात है? हमें कुछ नहीं कहना है, हम ये जगह खाली करने का ऑर्डर लेकर आए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की चीजें हैं। आपने 400 मिलियन कर्ज लिया है, 400 मिलियन फालतू चीज है? आप इसे एक बार देख सकते हैं, आपकी और आपके ऑफिस की जिम्मेदारी है। आप 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। बाहर निकलो, निकलो बाहर, बाहर जाओ।
कानूनी कागजात फाड़ते
जनाब, आप बाहर जाइए।
चलो निकलो यहाँ से।
ये समझते क्यों नहीं, आप बाहर जाइए। अरे जाइए बाहर, जाइए आप, सब जाइए बाहर।
मेरी बात सुनिए, आप बोल क्या रहे हैं?
अरे
मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से बाहर।
देखिए, जब तक मामला निमटता नहीं मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से।
कुछ नहीं सुन,
मैं कानूनी कागज लेकर आया हूँ, मैं ऐसा नहीं जा सकता हूँ।
ये
इन चीजों में चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ से चले जाओ कि 3 घंटे जबान हिलानी पड़ेगी ताकि वो तुम्हारी शिकायत ना करें। यहाँ तुम वापस नहीं आओगे, यहाँ मेरे सामने, समझे? जाओ खुद को संभालने की कोशिश करो। कावे चलो निकलो।
मुझे इस कावे का नंबर चाहिए। जो नंबर मेरे पास से जब भी लगाती हूँ तो यही जवाब मिलता है कि गलत है। मुझे लगता है कि मेरे पास गलत नंबर लिखा हुआ है।
मैंने अपने मोबाइल का बिल नहीं भरा है, एक तरफा हो गया है। घर के फोन से नंबर मिला लो। कावे से क्या काम है?
नहीं, नीचे से फोन करती हूँ।
सारा, तुमने नाश्ता किया?
पूना ने कमरे का दरवाजा कल रात से अब तक बंद कर रखा है। इतनी आवाज लगा रही, दरवाजा पीटने जवाब ही नहीं देती।
उसने अपने बाप को खोया है, छोड़ दो, अकेले रहने दो,
दुखी है। हेलो, सलाम जनाब कावे, मुझे आपसे मिलना है।
कुछ हुआ क्या?
शायद।
ठीक है, कहाँ? नहीं मालूम, जहाँ आप कहें, आपके घर के पास, मेरे घर के पास।
ठीक है, फिर हम 1 घंटे बाद तुम्हारे घर के पास मिलते हैं।
ठीक है,
खुदा हाफिज। मेरे लिए एक काम करोगी? अहवाज के लिए एक टिकट मंगवा लो मेरे डैड के नाम।
अपने भाई के साथ बाबा की कब्र पर थी। मेरा पैर लड़खड़ा और कब्र में जा गिरी।
इस रिपोर्ट में लिखा है कि तुमको मारा पीटा है।
अब जो भी हो, मैं शाकी नहीं हूं।
सलाम। तुमको तो अकरम के घर रुकना था, फिर क्या हुआ?
मुझे याद नहीं कि कभी तुम्हारे बाप ने अपने बच्चों पर हाथ उठाया हो। फिर तुमने अपनी बहन पर हाथ क्यों उठाया? हद से ज्यादा बढ़ने का मतलब समझते हो क्या हुआ? मर्द का हाथ ऊपर नहीं उठा करता है। अगर उठ गया तो फिर मर्दान की कैसी, ये क्या बात हुई, ये कैसी हरकत हुई? ये मत सोचना कि बाप के बाद कोई नहीं है उसका।
मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है माँ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
आदमी को अपनी बुरी या अच्छी आदत पर चिल्लाना नहीं चाहिए।
कौन सा मर्द हूँ मैं तो अभी छोटा हूँ।
हाँ, मैं तो भूल गई थी कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। एक ऐसा बच्चा जो इस हालत में दिलासा देने और हौसला बढ़ाने के बजाय, इज्जत बढ़ाने के बजाय हंगामा खड़ा करता है।
वो
उसने जो कुछ भी किया हो, तुमसे ज्यादा पूना पर मेरा हक है, तुम्हारे बाप का हक और ज्यादा था। सर पीटने का तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे बाप का हाथ ज्यादा भारी था और ताकत भी तुमसे ज्यादा थी, लेकिन हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि रास्ता ढूंढ रहे थे, हल तलाश कर रहे थे। बुरा है कि हंगामा करते हो।
अगर पूना की वजह से ये सब हंगामा करता हूं तो इस वजह से है कि सुकून मिले, इस वजह से है कि खुद को उगल दूं, इसलिए कि मेरी सांस अटक गई है।
पूना भी मेरी औलाद है, तुम्हारी तरह, मीना की तरह, अकरम की तरह, तुम्हारी दूसरी बहनों की तरह। लेकिन मुझे नहीं मालूम उसको क्या हुआ है, कहां क्या है, क्या नहीं है।
बुराई उसके दिमाग में है। बुराई इसमें है कि वो मर्द नहीं है जो गैरत का मतलब समझे।
अच्छा, ये अंडे से जर्दी निकालने का काम सिर्फ मर्दों का है? गैरत सिर्फ मर्दों में ही होती है?
बात को उलझा क्यों रही हो मां?
एक घंटे की नींद में कल रात तुम्हारे बाप को ख्वाब में देखा। क्या था क्या नहीं था मुझे याद नहीं है, बस इतना जानती हूं लगता है कि वो राजी नहीं थे। दुकानदार को हमेशा रेजगारी की कमी रहती है। हो सकता है कि किसी ग्राहक को तुम्हारे बाबा ने कहा हो कि रेजगारी नहीं है, शर्मिंदा हूं। कभी ग्राहक के पास भी रेजगारी नहीं होती तो बोलता है कि बाद में ले लेना। तुम्हारे बाप का जो कर्जा है वो उन पर फातिहा समझो, लेकिन दूसरों का कर्जा तुम्हारे बाप पर बोझ नहीं बनना चाहिए। एक कागज लिखकर दुकान पर चिपकाना होगा।
खुदा उनकी रूह को बख्श दे। मेरा काम कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ दूं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَهُونَ صدق الله العلي العظيم.
بابا کی فاتحہ خانے میں خود کراؤں گی.
بیٹھو میری بیٹی بیٹھو. لا الہ الا اللہ, خدا پر فدا ہو جاؤں. اس کی کیا چیز بے موقع ہے کہ ہوا بھی بے موقع چلے. جب ہوا خدا کے حکم سے پتھر کے نیچے دبے ہوئے نوٹ کو اڑا لے جائے تو واللہ عالم اس نوٹ کی حقیقت کیا تھی کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ پیسہ قرآن کی بابت خرچ ہو. اللہ عالم کیا تھا کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ نوٹ مردہ کے سینے پر بوجھ بن جائے. اللہ عالم.
سلام. جو خبر مجھے ملی ہے اگر اس کی تصدیق کروں اور بھٹکتی پھروں تو یہ بات عقل و تدبیر سے تھوڑی دور ہے, لیکن جو خبر مجھے ملی ہے اسے میرے دماغ میں سوالوں کی بوچھار ہے جن کے جواب تمہیں دینے ہوں گے. وہ سوال یہ ہے کہ جس رات جس کے بعد سے احمد رضا گھر سے لاپتہ ہوا, اس رات کو احمد رضا سے تمہارا جھگڑا کیوں ہوا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ پڑوسیوں کے اعتراض کا باعث بنی؟ پھر دو دن بعد میرے شوہر کے گھر کیوں گئے؟ چوکی دار سے گھر کی چابی لی اور اس کے ہاتھ پر کچھ چیز رکھی, پھر تم نے گھر کی تلاشی لی. کیا چیز ڈھونڈ رہے تھے؟ یہ سب سوال ہیں. ان سبھی سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہیں.
اتنے سارے سوال جو کر رہی ہو, اتنی ساری نشانیاں جو دہرا رہی ہو, ان کے جواب سے احمد رضا کی گمشدگی سے پردہ اٹھانے میں مدد نہیں ملے گی.
تم بتانا شروع کرو, یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو کہ کیا کرنا ہے. نہیں بتاؤ گے؟ پھر میں اس کو بلاؤں جس کے آنے سے تم بتاؤ گے, یعنی پولیس.
خوجستہ خانم رکیے, خوجستہ خانم, کیا سننا نہیں چاہتی تھی؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں.
بتاؤ اس چشمے کے پیچھے کیا چھپا ہے.
جب میری عمر 1 سال کی تھی اور میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا, جب میری ماں نے یہ سمجھا کہ ان کی عزت کے علاوہ ان کی زندگی کے ساتھ بھی سازش کی جا رہی ہے, تب میرے والد کا شناختی کارڈ نرگس جان کو دے دیا. نرگس جان تو یاد ہوں گی نا؟ میری ماں نے میرے والد کا شناختی کارڈ نرگس جان کو دے دیا تاکہ ایک دن ایک وقت جب میں بڑا ہو جاؤں تو میرے والد کا شناختی کارڈ مجھے دکھا سکے, تاکہ میں جان سکوں کہ میرے باپ کا نام کیا تھا. وہ شناختی کارڈ جو ظاہری طور پر نرگس جان کے کمرے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے راکھ اور ہوا بن کے ختم ہو گیا, اسی وجہ سے نرگس جان نے وہ شناختی کارڈ مجھے نہیں دیا اور نہ ہی یہ بتا سکیں کہ تمہارے باپ کا نام یوسف شائستہ تھا, پرویز شائستہ کے بھائی. میرا خاندانی نام محترمہ میری ماں کی نسل کی بھینٹ چڑھ گیا. میرے چچا جن کا نام پرویز شائستہ ہے ان کی بھینٹ چڑھ گیا, اور ان کی بہن فلور کی بھیڑ چڑھ گیا. میرا خاندانی نام مجھ سے چھین لیا اور بات کرنے کے لائق ہوا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو میرے کان میں یہ ڈال دیا گیا کہ میں ایک سڑک چھاپ لاوارث بچہ ہوں. जानती हो क्यों? इसलिए कि दो दिन बाद मैं उठ खड़ा ना हूं और शाइस्ता खानदान से यह ना पूछूं कि मेरा हिस्सा और तरका क्या हुआ।
इसका ताल्लुक अहमद रजा के घर में होने वाले झगड़े से क्या है?
परवेश शाइस्ता के बैंक लॉकर में कर्जा लेने के लिए जरूरी दस्तावेजात थे। अहमद रजा शाइस्ता को फोन करके कहता है कि उसे दस्तावेज की जरूरत है। शाइस्ता भी मजबूर होकर लॉकर का कोड अहमद रजा को देने को राजी हो जाता है। जब अहमद रजा ने कागजात के लिए उस लॉकर को खोला तो उसकी नजर उस शनाख्ती कार्ड पर पड़ी जिस पर यूसुफ शाइस्ता का नाम लिखा था। अहमद रजा ने खुद यह बात मुझे बताई कि उसने वो कार्ड अपनी आंखों से देखा था। तजस्सुस की खातिर उसने मुझे ये सब बताया, वरना मेरे, शाइस्ता, उसकी बहन और नरगिस जान के अलावा उस राज के बारे में किसी को खबर नहीं थी, यानी बिल्कुल नहीं थी।
और फिर तुम दोनों का झगड़ा हो गया क्योंकि तुमने उससे लॉकर का कोड मांगा और उसने नहीं दिया, और जब वो लापता हो गया तो घर को बिखेर दिया सिर्फ कोड और चाबी के लिए। अगर वो शनाख्ती कार्ड इस कदर जरूरी था तो आसान रास्ता क्यों नहीं अपनाया? कानून का रास्ता अपनाते हुए अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड हासिल कर सकते थे और अपने चाचा से अपना हक ले सकते थे। ठीक है, तुम्हारी ये खामोशी मुझे पुलिस के पास जाने पर मजबूर कर रही है क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो।
मैं सोच रहा था कि झूठ का मामला है, खुदा इसका फैसला करेगा, ना कि पुलिस।
मैं अपने चाचा से अपना हक हासिल करके रहूंगा और अपने हिसाब से करूंगा, यानी इस काम के लिए मेरा मुहर्रिक भी है।
हाँ, मुहर्रिक? तुम सभी लोग पाक पाकीज़ा हो ना? इस बीच सिर्फ अहमद रजा है जो पाक साफ नहीं है। ये अहमद रजा ही है जो बगैर किसी मुहर्रिक के शाइस्ता को धोखा दे बैठता है।
तो मैं आखिरी तक बात समझता हूँ, इसका मतलब जानता हूँ, मतलब पढ़ लेता हूँ, मतलब सारा मतलब समझता हूँ। नहीं मोहतरमा, मैं शाइस्ता की बर्बाद होने वाली दौलत में मुलविस नहीं हूँ। जब तुम कहती हो मुहर्रिक तो मैं आखिर तक समझ जाता हूँ। तुम अहमद रजा की जगह किसी और को पुलिस के हवाले करना चाहती हो। नहीं मोहतरमा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मगर अहमद रजा।
मगर अहमद रजा क्या? अहमद रजा क्या? तुमने अपनी दोस्ती की बात की, तुमने कहा मुतमईन हो कि वो सही है, तुमने कहा उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है।
मैंने कहा मैं उसको चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं अहमद रजा को बहुत पसंद करता हूँ लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। मगर
मगर क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ कावे, क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती?